الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى أخبارًا عن العبد الصالح بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلى شبر تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک باتیں سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو سننے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی بنانے کے لیے نمونہ، اور ہماری زندگی کو سجانے کے لیے نمونہ، اور خوبصورت بنانے کے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ بات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. میرے اور آپ کے لیے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل نہ کریں سو اللہ ہم سے پیار نہیں کرے گا، اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری نفرت ہوگی، لوگ بھی ہم سے پیار نہیں کریں گے. کیونکہ اللہ نے فرمایا: اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تم سے محبت کروں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میرے نبی کے طریقے پر چلتے رہو. معلوم ہوا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. جب اللہ محبت کرے گا تو یقیناً فرشتے اور مخلوق بھی ہم سے محبت کرے گی. ہم یہاں مدرسے میں ہر وینزڈے کو آتے ہیں درس حدیث ریاض الصالحین کو سننے کے لیے. آتے ہوئے ہم نیت کریں، انٹینشن کریں، وی مسٹ میک انٹینشن کہ یا اللہ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ یہ باتیں ہماری زندگی میں اتار دے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے انسان کو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر سنت پر عمل، جتنا ہو سکے جو بھی کام کرے ٹرائی کرو، ہر کام میں سنت سامنے ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہوگی. اس لیے کہ دنیا میں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو ان کے طریقے کو خوشی کے ساتھ اپنی زندگی میں بسا لاتا ہے. لیلا مجنون کا واقعہ تو مولانا روم نے لکھا ہی ہے، مجھے یہاں اس واقعے کو نہیں بیان کرنا ہے، مجھے کہنا ہے کہ لیلا نے کہا مجنون بہت سارے تھے، ایک نہیں تھا بہت سارے تھے، اس نے کہلوایا کہ بدن کا خون چاہیے تو سارے بھاگ گئے سوائے ایک اصلی مجنون کے. اصلی مجنون تھا، اس نے ایک جگہ کا خون نہیں دیا، اس نے بدن کے ہر عضو سے خون نکال کے دیا. اور یوں کہا کہ لیلا نے تو صرف خون بدن کا مانگا ہے، نہ معلوم کون سی جگہ کا، اس لیے ہر جگہ کا خون نکال کر اس نے دیا، کیونکہ یہ تو ایک فانی محبت ہے. دنیا کی ایک فاسد محبت میں اتنا آدمی بے قرار بے چین ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھر کیسی ہونی چاہیے، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، جن کی محنت پر اللہ نے اسلام کو چمکایا ہے، اور جن کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن جن کے صدقے ہمیں سفارش ملے گی، جن کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے. کیا خیال ہے انسان کا کہ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے، کتنی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تکبر کو، حسد کو، بغض کو، کینہ اور کپٹ کو، اور انمٹی اور دشمنی کو اپنی زندگی سے نکالے گا، اور ہمیں اللہ متواضع اور تواضع اور عاجزی والا بنائے گا. اللہ تعالی ہماری زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک جگہ پر لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کا واقعہ. شاہ ولی اللہ صاحب کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، شاہ عبد الرحیم دہلوی. شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ نے اس کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایسی پگ ڈنڈی یعنی ایسے راستے سے گزر ہوا کہ دونوں طرف کیچڑ تھا، بیچ میں صرف ایک ہی آدمی چل سکتا ہے، ادھر سے ایک طرف سے کراس کر کے دوسری طرف جانا تھا، دونوں طرف پانی کیچڑ تھا، گندا پانی تھا. حضرت نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جب مڈل آف دا وے پہنچے راستے کے درمیان میں تو سامنے سے کٹا آ رہا ہے. اب وہ بھی سامنے سے آ رہا ہے، حضرت ادھر سے ادھر جا رہے، وہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے. اب وہاں جو تھانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ وہاں کتے کے ساتھ مکالمہ ہوا، ایسا تو نہیں کہ کتے کے ساتھ بات کی، یعنی حضرت کے دل میں ایک قسم کا خیال آیا، اور عجیب خیال تھا کہ یہ کتا تو ویسے بھی ناپاک ہی ہے، اگر یہ پانی میں اتر جائے اور میں پاس ہو جاؤں تو پھر میرے تو کپڑے بچ جائیں گے، کتا تو ویسے بھی ناپاک ہے، اگر یہ پانی میں کیچر میں اتر گیا تو نقصان اس کا کچھ نہیں ہوگا، اگر میں اتر گیا تو کپڑے تو میرے گندے ہو جائیں گے، اور جا رہا ہوں مسجد پھر دھونے کی فکر، پھر کپڑے کی دھونے کی، بدن کی دھونے کی فکر. یہ خیال ہے، کتا سامنے کھڑا ہے، یہ ادھر کھڑے ہیں، یہ بھی نہیں جا سکتے وہ بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی پگ ڈنڈی کا راستہ، یا تو یہ اترے یا تو یہ اترے، دونوں میں سے کوئی ایک پانی میں اتر جائے تو مسئلہ حل ہوتا ہے. اگر حضرت اتر گئے تو کتا پاس ہو سکتا ہے، اگر کتا اتر گیا تو حضرت پاس ہو جائیں گے، راستے کو پاس کر لیں گے. لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ کتا اتر جائے تو بہتر ہے، پھر تھوڑی دیر سوچا، پھر خیال آیا کہ اگر میں کتا اتر گیا اور میں گزر جاؤں گا تو کتا، تو پھر میرے دل میں یہ خیال آیا कि फिर मेरे दिल में तकब्बुर पैदा होगा कि मैं कितना बड़ा हूं, कितना बड़ा हूं कि देख कुत्ते ने भी मुझे रास्ता दे दिया, कुत्ते ने भी रास्ता दे दिया। और खुद ही नकल करते हैं कि अगर ये कुत्ता उतर गया और मैं पास हो गया तो दिल में तकब्बुर होगा, और अगर मैं वापस चला जाऊं और कुत्ते को जाने दो फिर आऊं फिर क्रॉस करूं तो तकब्बुर पैदा नहीं होगा, या मैं नीचे उतर जाऊं और कुत्ता चला जाए तो कीचड़ में अगर मेरे कपड़े बिगड़ गए गंदे हो गए तो जाहिर को धोना तो मेरे लिए आसान है, जाहिर को धोना तो मेरे लिए आसान है, लेकिन अगर तकब्बुर पैदा हो गया तो उस तकब्बुर को धोना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हजरत वापस चले गए और कुत्ते को जाने दिया। ये कब होता है? जब एक इंसान के दिल में तवाज़ू हो, एक इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारता। वरना आज देखो कुत्ता क्या, इंसान को आदमी हकीर समझता है, गरीब को हकीर समझता है, बेवाओं को हकीर समझता है, यतीमों को हकीर समझता है, अगर साथ में बैठ गए तो भी हकीर समझता है। मैं यहां का बैठ गया, मैं मालदार हूं, मेरे पड़ोस में गरीब, मेरे पड़ोस में यतीम, मेरे पड़ोस में ये बेवा, कैसे होगा? आदमी खुद परेशान होता है, इसलिए कि उसके दिल में अपने माल का तकब्बुर होता है, अपने मर्तबा और कुर्सी का तकब्बुर होता है। बहुत सारी जगह देख लो, अगर कोई फकीर आ गया तो वैसे धक्के दे देंगे, सामने कोई अगर गरीब आदमी आ गया तो धक्के दे देंगे। इसीलिए अल्लाह ने नमाज जैसी मर्दों के लिए जमात के साथ पढ़ने की रखी है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, गरीब और मालदार सब एक ही सब में खड़े, बादशाह और गरीब एक ही सब में है। पढ़ना है तो जमात के साथ पर, अगर जमात का सवाब चाहता है सब में सब बराबर है। अल्लाह ये सबक सिखाता है रोजाना 5 मरतबा, ताकि दिल में तकब्बुर पैदा हो, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। और यही सबक सिखाया जाता है इंसान को हर नमाज में, मर्द हो या औरत, कि तू नमाज शुरू कर ये कहकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नमाज भी जब खत्म हो जाती है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद सबसे पहले अल्लाह अकबर, अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, तेरा हक कौन अदा कर सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं अपनी जिंदगी में पैदा कर ले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतें अपनी जिंदगी में पैदा कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको तरक्की अता फरमाएंगे। हदीस में आता है बुखारी शरीफ में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहकिरन मिनल मारूफ शैया, ला तहकिरन मिनल मारूफ शैया वलव अन तल्का खाकब बिवजही तलिक औ कमा कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया किसी नेकी को तुम हकीर न समझो चाहे छोटी क्यों ना, रास्ते से आपने कांटे को उठा लिया इसको हकीर न समझो। बुखारी शरीफ में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, फरमाया अल्लाह ने मुझे बड़ी नेकी भी बताई मेरी उम्मत की और मेरी उम्मत की छोटी नेकी भी बताई। बड़ी नेकियां तो है लेकिन छोटी नेकी कौन सी थी? मस्जिद से एक आदमी ने कचरा उठाया जरा सा और बाहर डाल दिया, अल्लाह ने उस नेकी को भी लिखा हुआ है, अल्लाह ने मुझे वो नेकी भी बताई। तो ला तहरिक तहकीरन मिनल, किसी भी छोटी नेकी को भी छोटी न समझो। अल्लाह के यहां छोटी नेकी पर भी आदमी की मगफिरत हो सकती है। नाम नहीं सुना आपने? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, वो खुद फरमाते हैं इंतकाल होने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, उन्होंने बताया क्या कैसी गुजरी, माही अपील कब्र, क्या हुआ यहां कब्र में। उन्होंने कहा मैं तो समझता था कि मैं तो वक्त में वक्त का मुहद्दिस यानी हदीस का काम किया, मैंने तफसीर का काम किया, फिकह का काम किया, तो मुझे कब्र में और कयामत में काम आएगा, अल्लाह ने तो एक छोटी नेकी पर मेरी मगफिरत कर दी। छोटी नेकी। वो कौन सी नेकी? मैं हदीस लिख रहा था, उस जमाने में ये लकड़ी के कलम होते थे, लकड़ी की पेन होती थी, और रोशनाई में डुबो डुबो कर मैं लिखता था हदीस। मैं जैसे ही कलम को रोशनाई में इंक पॉट में डाला, उसको निकाला, उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई, ऐसे मक्खी बैठ गई, और थोड़ा वो प्यासी होगी, तो मैंने दिल में कहा कि ये मक्खी प्यासी है, पी लेने दो, बाद में लिखूंगा। अब कितना वक्त लगा होगा, मे बी 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, वो बस मुंह में लिया होगा, उड़ गई होगी। लेकिन हजरत खुद फरमाते हैं, ये बात बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखी है, बड़े बड़े जलालुद्दीन सुयूती ने लिखी, इब्न हजर ने लिखी, फरमाया कि मुझे अल्लाह ने कहा तूने मेरी एक बेजुबान मखलूक प्यासी थी उसको पीने दिया, प्यासी थी, तो तेरी मगफिरत में आज हदीसों और तफसीरों और फुला की वजह से नहीं, उसे छोटे अमल पर मगफिरत कर देता। तो इतना बड़ा मुहद्दिस है, इमाम बुखारी का उस्ताद है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहकीरन मिन अल मारूफी शैया, छोटे से छोटा सा काम हो उसको भी नेकी समझो, उसको भी अपने लिए सआदत समझो। अल्लाह ने मुझे छोटी नेकी करने की भी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह के नबी उसकी मिसाल देते हैं, वलव अंतल का खाक बिवजहिन तलक, अगर एक मर्द दूसरे मर्द से या एक औरत दूसरी औरत से मुस्कुराहट के साथ मिलती है, अल्लाह के नबी मुस्कुराहट का जिक्र करता है, हम उस मुस्कुराहट को कुछ नहीं समझते हैं, सलाम अलैकुम खत्म। आजकल तो प्लास्टिक स्माइल का दौर है, इसलिए कि दिल तो वैसे ही मुर्दे हो चुके, दिल में है ही नहीं मुस्कुराहट, जबान पर भी नहीं, पहले तो सलाम करते ही नहीं, और अगर सलाम हो गया तो भी चेहरा बिल्कुल ऐसा लगता है कैस्टरऑयल पिया हुआ है। इसलिए अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उस मुस्कुराहट के साथ तुम दूसरे आदमी से मिलोगे, उस मुस्कुराहट पर भी अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर देगा, इस नेकी पर भी अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर देगा। कितनी छोटी नेकी है, कितनी छोटी नेकी है। हां मैं कहा करता हूं, आज दुनिया कहां से कहां तरक्की कर गई, कहां से कहां। पहले जमाने में सफर हजारों माइल का महीनों भर का होता था, और वही महीनों भर का सफर 8-10 घंटे में आदमी तय कर लेता है, फ्लाइट के जरिए, ट्रेन के जरिए तय कर लेता है। वो इतना लंबा सफर तय करने के लिए दुनिया में क्या और क्या बनाया गया, लेकिन कान से लेकर, देखो लेफ्ट कान है मेरा, उससे लेकर दिल कितना दूर है, कोई माइल है, एक बालिश्त है, लेकिन बरसों से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते हैं, दुनिया में तो तरक्की कर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कान से सुना, अभी तक दिल तक नहीं पहुंची, हमने इतनी तरक्की नहीं की, अल्लाह में समझ नसीब फरमा। इमाम नवी रहमतुल्लाह ने इसीलिए बुखारी शरीफ में है, वहां तू हक हूं हक अल्लाह, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद को अदा करो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करो, झगड़े आज इसी के हैं दुनिया में, मेरे हुकूक सब अदा करे, मैं किसी का अदा नहीं करूंगा, ऐसा ही झगड़ा, हर जगह झगड़ा यही है, सब मुझे सलाम करे, मैं किसी को सलाम नहीं करूंगा, सब मेरी तरफ झुके। और मैं पहले एक बात सुनाई थी, साउथ अफ्रीका में एक आदमी बहुत मालदार था, मेरे सामने गवाह किया, बहुत मालदार दाऊद भाई, अजीब बात, बहुत मालदार, टोटी बोलती थी उसे, वो मुझे कहने लगा, मुझे, मैंने कहा फुला आदमी ने आपको सलाम कहा है, मुझे मिलने आया था, मैंने कहा फुला आदमी ने मुझे कहा कि भाई ये मिल नहीं रहे कहीं बीमार, तो उसको मेरा सलाम किया, तो उसने मुझे सामने से क्या जवाब दिया, वो मुझे सलाम नहीं करते, वो मुझे मेरे पैसों को सलाम करते, वो मुझे सलाम नहीं कर रहे, मेरे पैसों को सलाम कर रहे। मेरे भाई पैसे तो आने जाने वाली चीज है, ये सुन्नत है सलाम का जवाब देना, आप काश के यू कह देते, तुम पर भी सलाम, उन पर भी सलाम, कहीं अल्लाह उसी पर तुम्हारी मगफिरत कर देते। आपने अल्लाह के नबी के एक सलाम को, जो सलाम सिर्फ हदीस में नहीं कुरान में है, वइज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यू बिअहसन, अल्लाह कुरान में कहते जब तुम सलाम करो अच्छे अल्फाज से सलाम करो, उसी कुरान की आयत को ही समझ करके आप सलाम का जवाब अच्छे अल्फाज में दे देते। तो लोग इस छोटी छोटी चीजों को तकब्बुर की वजह से हकीर समझते हैं कि लोग मुझे सलाम करें, मैं क्यों सलाम करूं, लोग मेरे सामने झुके, लोग मेरे दर पर आए। और मैं कहा करता हूं, बीसल फकीर अला बाबिल अमीर, वो आलिम, वो फकीर, वो मुफ्ती, वो शेख बहुत बुरा है जो मालदारों के दरवाजों के धक्के खाए। बात समझो मेरी, बीसल फकीर अला बाबिल अमीर व बीसल अमीर अला बाबिल फकीर, सबसे अच्छा मालदार वो है जो अल्लाह वालों के दरवाजों के धक्के खाए, नेक और आलिम और सुलहा के दरवाजे पर जाए उसमें उसकी मगफिरत होगी, और आलिम अगर जाएगा उसकी जिल्लत है। अल्लाह ने उसको इतनी बड़ी चीज दी है कि दुनिया कुछ भी नहीं है, कुरान इतनी बड़ी नेमत है, हदीस इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत और उनकी बातें और कुरान की नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि सारी दुनिया एक तरफ, कुरान की आयत एक तरफ, मुकाबला नहीं कर सकती। तो झगड़े ही इस बात के हैं आज, काश के लोग इस बात को समझते। इसलिए मैंने बात शुरू की यहां इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह की बात से कि जब कभी हम मजलिस में जाएं, जहां कहीं भी, शेख सानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हमने 83 में पढ़ी थी, गुलिस्ता बोस्ता और पंदनामा वगैरह फारसी में, उसमें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, नसीहत गरचे बर दीवार नशिस्ता बूत, कि नसीहत अगरचे दीवार पर लिखी हुई हो, हम नसीहत करने वाले को न देखें कि नसीहत करने वाला कौन है, उस नसीहत को देखें कि वहां क्या लिखा हुआ है, क्या यह मेरी जिंदगी बदलने का जरिया है या नहीं। बात समझ में आ रही है आपको, नसीहत वाले को न देखे, वो किसकी बात और क्या बात बयान कर रहा है। हम इस नीयत से आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान हो रही है, अल्लाह मेरी जिंदगियां सुन्नत वाली बना दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब है, उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी में आनी चाहिए और उसी पर मेहनत भी करनी चाहिए। अल्लामा नौवी ने यहां पर इस बाब में सबसे पहले कुरान की एक आयत ले आए, वो फुक्विदु अम्री इल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद, ऐसे ये आयत अल्लाह ने उतारी है सूरह गाफिर में। अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह ताला एक बंदे का जिक्र करते हैं इस आयत के तहत, जिसने लोगों को ईमान की दावत दी, ईमान की दावत, और उनकी तरफ से उस बंदे साले को लोगों ने बहुत तकलीफ पहुंचाई और पहुंचाने की धमकियां दी। आज तो ऐसा ही है ना, नेक काम करो तो उसके लिए तो बड़ी तकलीफें आनी ही आनी है, आनी है। उस मौके पर जब धमकियां दी लोगों ने, तो उस बंदे ने आंसर में, जवाब में एक बात कही, He said one thing. जवाब में कहा, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, I am hand overing my matter to Allah. जैसे तिर्मिज़ी शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में है कि अगर कोई बंदा यूं कहे, لا حول ولا قوة إلا بالله, असल तर्जमा इसका यह है कि मेरे अंदर में नेकी करने की कोई ताकत नहीं और गुनाह से बचने की कोई ताकत नहीं, इल्ला बिल्ला, मगर अल्लाह की तौफीक से, विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, विद द तौफीक ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह उस वक्त फरिश्तों से कहता है इस बंदे ने अपना मैटर अपना प्रॉब्लम मुझे हैंड ओवर किया, मुझे सपुर्द किया है, ए मैं फरिश्तों गवाह रहो मैं इसका काम कर दूंगा। इसलिए बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी साहब को नसीहत दी कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला जन्नत का खजाना है। बुखारी शरीफ की बात अभी कुछ दिन पहले रिवायत गुजरी असबाक में, जन्नत का खजाना, आदमी खजाना ही तलाश करता रहे लेकिन अल्लाह के नबी ने जो हमें बतलाया उस पर कभी अमल नहीं करता। इसलिए तिर्मिज़ी शरीफ में है अगर कोई बंदा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला 100 मरतबा पर ले तो अल्लाह उसकी 99 बीमारियों को दूर कर देगा, उसमें सबसे छोटी बीमारी और वो क्या है, हम टेंशन डिप्रेशन गम। आजकल ये टेंशन हर जगह है, डिप्रेशन हर घर में है, हर आदमी को हर फर्द को है, कभी औलाद का टेंशन, कभी मां का, कभी बाप का, कभी दुकान का, कभी किसका, कभी किसका, सुबह सोते उठते ही सर में दर्द है, शाम में सोते ही सर में दर्द है, पूरा दिन ही ऐसा जाता है टेंशन में परेशानियों में। अब तो टेंशन का ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर भी टेंशन में अपने आप को शूट कर दिया इसने ताकि वो टेंशन से फारिग ही हो जाए। यू डोंट हैव टेंशन टू दैट, अपने आप को मार दिया तो टेंशन ही नहीं रहा होता। जैसे कहते हैं पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है, हिंदुस्तान में बहुत गुर्बत है, बांग्लादेश में बहुत गुर्बत है, गुर्बत 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 करते रहते हैं। अब उस गुर्बत का खात्मा कैसे करेंगे, ऐसा करो सारे गरीबों को खत्म कर दो तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं, बस गुर्बत गुर्बत से कोई खत्म खात्मा होने वाला नहीं है, उसकी कुछ सलूशन होते हैं, उसकी कुछ तरीके होते हैं कि गुर्बत कैसे खत्म की जाए। खाली बयानों से, खाली आवाजों से, खाली ऐलानों से कुछ नहीं होता। तो यहां पर भी 99 बीमारियों में सबसे छोटी बीमारी, अब इससे बड़ा वजीफा कौन बतलाएगा तुम्हें, हदीस की रोशनी में अगर आदमी 100 मरतबा पढ़ ले, अब उससे ये तो छोटी जिसको हम बड़ी समझते हैं टेंशन को डिप्रेशन को मेंटलनेस को, आप बिलीव न कीजिए, मेरे पास एनएचएस वाले नॉन मुस्लिम भी केस लेकर आए और मुझे कहा ये पागल है। मैंने कहा लाओ जैतून का तेल लाओ, मैंने उसमें ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला 100 बार दम कर दिया, मैंने कहा इसके सर में मसाज करो 10 दिन तक फिर मुझे बताओ। एक मेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे पास आया था अपनी बेटी को लेकर के, परेशान हो गया, कौन सी दवा मैंने उसको नहीं दी। मैंने कहा नबी का वजीफा देता हूं, दवाएं तुमने सब कुछ कर ली असबाब के दर्जे में, चलो एक रूहानी वजीफा भी कर लो। मैंने कहा लाओ जैतून, चूंकि अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया जैतून को पियो व दहिनू, और जैतून को बदन पर लगाओ भी, बड़े फजाइल है इसके, तो ये भी बरकत वाला। और अल्लाह के नबी का दिया हुआ वजीफा अगर मुझे बीबीसी न्यूज वाला कोई कह दे तो मैं इतना दिल से मान लूंगा, अगर कोई न्यूज कह दे तो मैं दिल से मान लूंगा, लेकिन मेरे नबी की बातें हम दिल से नहीं मानते, यकीन के साथ नहीं मानते, हमें यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी आंखों देखा तजुर्बा है, हजारों वाकियात है, उन लोगों ने मुझ पर जवाबन खत लिखा, मेरे पास मौजूद है कि हमारा केस तो 10 दिन में बगैर दवा के ठीक हो गया, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है, फरमान है, ओ भाई सर में बदन में दर्द है लाओ ये जैतून उसमें दम करो। ये अल्लाह के नबी ने कहा 99 सिकनेस की दवा है, उसमें छोटी जो टेंशन है तो उससे बड़ी क्या क्या बीमारियां हैं। कभी सोचा आपने, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, फुला हमारे मौलाना मक्की साहब की मेरी मुलाकात, कहते हैं भाई देखो जैतून को पिलाओ ये बहुत ही बेस्ट है अल्लाह के नबी, और उसमें दम कर लिया तो नूर नाला नूर है। हम करते नहीं, परेशान रहते हैं रात दिन, परेशान, खपकियां होती है, नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं। तो ये बात वफ़ुबिदु अम्री इल्लाह से याद आई कि अपना मैटर अल्लाह को तो कम से कम सुपुर्द करो। अल्लाह मैं डॉक्टर के पास होना तो ये चाहिए था, मैं पहले अल्लाह के सामने 2 रकात पढ़ता, अल्लाह मेरी जिंदगी में ये परेशानी है तू मेरी परेशानी को दूर कर दे,
कभी रात में 2 बजे उठ करके वुजू करके 2 रकात पढ़ लेता और यूं कहता, अल्लाह मैं और तू कोई नहीं है, हम दोनों हैं, मेरा ये मैं सजदे में जाकर तुझसे गिर गिरा रहा हूं, मेरा ये काम कर दे। क्या अल्लाह बहरा है, क्या अल्लाह गुंगा है, क्या अल्लाह डेफ है, क्या अल्लाह देख नहीं सकता? वो नाबीना है, सब कुछ देखता है, सब कुछ हमारे साथ है। वह माकुम अयनमा कुंतुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां कहीं तुम हो। यह कुरान की आयत है, अल्लाह हाजिरी अल्लाह नाजिरी, अल्लाह हाजिर नाजिर देखता है हर जगह। तो वो हम उसके सामने 2 रकात आजिजी के साथ तवाजू के साथ पढ़कर हम अपने मैटर को अल्लाह को सुपुर्द करें। ये अल्लाह बाद में असबाब कभी इख्तियार करे, कोई मना नहीं करता। असबाब का दर्जा इख्तियार करना सुन्नत, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया असबाब को इख्तियार करना है, असबाब के बगैर तो काम नहीं चलेगा। लेकिन यकीन तो अल्लाह पर रखे कि मैंने सब कुछ कर लिया, आखिर में एक काम तो कम से कम कर ले कि मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर मैं अल्लाह से मांगू। ये चीज है, अल्लाह हमें वो यकीन नसीब फरमाए जो सहाबा किराम का था। मौलाना बद्र आलम साहब मीरठी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तर्जुमान सुन्ना लिखा है 4 जिल्दों में हदीस की किताब, वहां जन्नतुल बकी में सोए हुए हैं। 3 मरतबा इनकी कब्र खोदी गई, लेकिन बॉडी जैसे ऐसे जैसे आज दफन किया। हमारे शेख पाकिस्तान की हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, कहा करते थे कि मैंने उनके बेटे आलिम जो है अभी मदीना मुनव्वरा में उनसे पूछा कि बाप को अल्लाह ने ये दर्जा कैसे दिया। कहा मेरे वालिद साहब तो जैसे लोग इबादत करते वैसे, लेकिन अक्सर दिन का हिस्सा मस्जिद नबवी में बैठकर दुरूद पढ़ा करते थे, लेकिन एक काम पूरी जिंदगी करते थे और दूसरों को कहते भी थे। और वो ये है कि कोई हाफिज कुरान सामने बैठा हो तो उसकी तरफ अपना पैर न फैलाओ, जैसे कुरान की तरफ पैर नहीं फैलाते, we don't spread our leg towards the Quran, similarly towards the हाफिज कुरान जिसके सीने में कुरान है उसकी तरफ भी अपना पैर न फैलाओ, उसका अदब करो कुरान की वजह से, बिकॉज ऑफ द कुरान। हमें शाउट करते थे, फरमाया इतने ज्यादा बीमार थे फिर भी कभी अपने पैर को किसी आलिम या हाफिज की तरफ स्प्रेड नहीं किया। तो कहते हैं शायद इसी एक बात के ऊपर अल्लाह ने उनको वो कुरान की अदब एहतराम के ऊपर, तो बात तो मेरी निकली। उन्होंने 4 जिल्द में लिखा है, बद्र आलम साहब ने 4 जिल्द में लिखा है तर्जुमान सुन्ना की। सहाबे किराम पहुंचे, 3,000 का लश्कर है समंदर के किनारे, कोई कश्ती नहीं, और अल्लाह साहब ने उनको भेजा है नरमी के लिए, कश्ती तो है नहीं। अब इनका यकीन वैसा बड़ा भारी यकीन था, वो पारों से भी बड़ा, हमारा तो कुछ नहीं है, एक टिनके के बराबर भी नहीं है, उनका यकीन तो पारों से भी बड़ा था। साहबा को, साहबा ने अल्लाह के नबी को देखा था, फरमाया 3,000 के लश्कर में एक सहाबी ने 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ी अल्लाह के सामने, और अल्लाह के 4 नाम लिए, या हलीमू या अलीमू या अलीयू या अजीमू, या हलीमू या अलीमू या अलीयू या अजीमू, ये 4 नाम लिए। ये 4 नाम लेकर फिर सारे साहबा से कहा चलो पानी पर, बगैर कश्ती के पानी पर क्रॉस कर लिया, क्रॉस कर लिया, गुजर गए, वापस भी आ गए। उन्होंने तो वैसे ही हुकूमत दे दी, अब एक लड़ना नहीं है, लगता है देव आमद लगता है कोई देवता आ गए, जिन्नात आ गए, पानी पर कोई चलता है, आ गए वापस। फिर आ वापसी में उस सहाबी का इंतकाल हो गया, रास्ते में तो गांव वालों ने दफन होने के बाद कहा यहां दफन न करो, रात में भेड़िए आते हैं और बॉडी निकाल कर ले जाते हैं। उन्होंने 2 बार कब्र खोदी कहीं और दफन करने के लिए, तो उस सहाबी की कब्र के अंदर में बॉडी ही नहीं है। देखा तो अंदर में तो बहुत बड़ा मकान नजर आ रहा है, कहां गया जन्नत में अल्लाह ने उठाया। ये सारा वाकया लिखा है, अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज पढ़े। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, मुझे ये 4 नाम की इजाजत मेरे शेख ने दी थी तहज्जुद के वक्त में। तहज्जुद के वक्त मेरे घर पर तशरीफ लाए थे साउथ अफ्रीका में, तो तहज्जुद में उठे, हजरत ने वुजू किया और वुजू करने के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ी और हमने भी उनके साथ पढ़ ली। तो उसके बाद उन्होंने कहा तर्जुमान सुन्ना लाओ, तो मैं ले आया घर में से तर्जुमान सुन्ना, कहा खोलो, चोटी झील में फुला वाकिया पढ़ो। मैंने पढ़ लिया पूरा वाकिया पढ़ लिया। पढ़ने के बाद कहा, क्या सिराज तू ये समझता है कि मुझे ये वाकिया याद नहीं है? मैंने कहा, हजरत आप तो माशाल्लाह बहुत हदीस पढ़ाने वाले, आपको तो याद है। मैंने कहा ना, कहा आपने मुझे कहा तो मैंने पढ़ लिया हजरत। कहा इसी तरह हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे तहज्जुद में कहा था कि इसी तरह लाओ किताब तर्जुमान सुन्ना वाकिया पढ़ो। मैंने पढ़ा, कहा तू समझता है जकरिया को ये वाकिया याद नहीं? पर इसी तरह ये वाकिया आता रहा उस साहबी से लेकर हम तक। और वो चार नाम क्या है? दो रकात पढ़कर कोई भी परेशानी हो आप देखेंगे, कोई भी मसला मुश्किल हो, कोई भी उस हुक्म का था, कोर्ट का केस हो या कोई भी चीज हो, अगर आप सही रास्ते पर हो, सही तरीके पर हो, तो दो रकात सलातुल हाजत पढ़ो और उसके बाद सात मरतबा तरतीब जरूरी है ये नाम पढ़े, या हलीम हा बड़ी हा के साथ, या हलीम और या अलीम या एन के साथ, या अलीम और या अली अल्लाह का नाम है, या अली और या अजीम, ये चार नाम है, या हलीम या अलीम या अली या अजीम, सात मरतबा ये पूरा एक हो गया, या हलीम या अलीम या अली या अजीम एक हो गया, फिर या हलीम या अलीम या अली या अजीम दो हो गया, इस तरह या हलीम या अलीम या अली या अजीम तीन हो गया, सात मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े सात मरतबा, फिर अल्लाह से दुआ करे अपनी परेशानी के लिए, अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। यही वो नाम जहां पर तर्जुमान सुन्ना में मुझे इजाजत दी है, लिखा हुआ है, वो सहाबी ने पढ़ा, दो रकात पढ़ी, फिर ये नाम पढ़ा और अल्लाह से दुआ करके पानी पर चलना शुरू किया। तो हम अपना मैटर अल्लाह को सुपुर्द नहीं करते हैं, लोगों के सामने वावेला तो हम जरूर करते हैं, लेकिन कभी अपनी रूहानी या जिस्मानी परेशानी को अल्लाह के सामने बयान नहीं किया। कभी यूं नहीं कहा अल्लाह तू मेरा बन जा, कभी कहा नहीं कहा। दुनिया के लिए तो बड़ी दुआएं की हमने, लेकिन कभी नहीं कहा अल्लाह तूने मुझे पैदा किया है तू मुझसे राजी हो जा, तू मेरा बन जा, तू मुझे तेरी मर्जियात पर चला दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अगर हम अल्लाह से अल्लाह को मांगे तो फिर क्या चाहिए? अगर वो बांडी बादशाह के सर पर हाथ रखकर यूं कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बादशाह मिल गया तो फिर सब कुछ मिल गया। अगर मैं अल्लाह से यूं कहूं हर दुआ में, अल्लाह तू मेरा बन जा, अल्लाह तू मुझे अपना बना ले, मुझे अपना बना ले, मुझसे राजी हो जा, तेरी मर्जियात पर चला दे, अगर अल्लाह हमारा बन गया तो हमें कौन हाथ लगाने वाला है, हमें कौन सी परेशानी, अगर आएंगे भी तो अल्लाह की तरफ से वो उसकी शिफा भी देगा। इसलिए इमाम नौबी रहमतुल्लाह ने इस बाब में इस आयत को सबसे पहले लाए हैं, वो फुविदु अम्री इल्लाह इन्नल्लाह। तो ये उस आदमी ने उस वक्त कहा मैं अपना मैटर अल्लाह को सुपुर्द करता हूं और अल्लाह मेरे मैटर को जानता है। जब उन्होंने यूं कहा कि मैं अपने तुम लोग मुझे धमकियां देते हैं, मैं अपना मैटर अल्लाह को सुपुर्द करता हूं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद फरमाई। आज दुनिया में कोई कौन है कि जिसको तकलीफ पहुंचाने वाला कोई नहीं? कोई ना कोई तो तकलीफ पहुंचाता है किसी ना किसी, कोई नहीं तो शैतान तो है ही, कोई नहीं तो नफ्स तो है ही, तकलीफ पहुंचाने वाली बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह के सामने दो रकात पढ़कर अल्लाह से कहे अल्लाह तू मेरा बन जा, और इन शयातीन से, इन नफूस से, गंदे नफ्सों से और दुनिया के दुश्मनों से अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा। मौलाना रूम कहते हैं दुश्मन अगर कवीस्त मुहाफिज कवी तरस्त। दुश्मन तेरा अगर जब मजबूत है लेकिन तेरी हिफाजत करने वाला सबसे बड़ा मजबूत है। इसलिए अपने मैटर को अल्लाह को सुपुर्द करना चाहिए, यह हमारी जिंदगी होनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में जब कभी परेशानी आए, यही तो तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और यही बात अल्लाह कुरान में कह रहे हैं इस्ताईनु बिस्सबरी वस्सला इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह के नबी पर जब कभी भी परेशानी आई दो रकात पढ़ी और कहते थे या हय्युन या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्युन या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंत बिरहमतिका अस्तगीस। इसलिए उलमा फरमाते हैं इसमें आजम है, ये इसमें आजम है। اور کبھی کہتے رہے دو رکعت پڑھ کر اللہ اللہ لا اشرک کبھی کشیا اللہ اللہ لا اشرک کبھی کشیا, یہ بھی اسم اعظم ہے. اگر وہ یہ پڑھ کر دعا کرے تو اللہ پھر بھی دعا قبول کر لے. تو اللہ سے دعا کرے, وقت ہو گیا. اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا بدیع السماوات والارض, یا بدیع السماوات والارض, یا بدیع السماوات والارض, یا بدیع السماوات والارض, یا حنان یا منان, یا دیان یا سلطان. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. يا الله يا رحمان يا رحيم, اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہم کمزور ہیں لیکن تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں, تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم ظلوم جہولہ کی طرح ہے, اے میرے مولا, اے اللہ ہم بہت جلد باز ہے الہ العالمین. اے اللہ گناہوں کے پتلے ہیں, رات میں دن میں خلوت میں جلوت میں اپنوں میں گھر میں گھر سے باہر چھپ کر کھل کر بڑے کھلے گا. اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کو دنیا والوں سے تو چھپا لیا ہے, اے اللہ ماں باپ سے تو چھپا لیا, دوست احباب بیوی بچوں سے چھپا لیا, اے اللہ شاگرد مریدوں سے چھپا لیا, لیکن تجھ سے کون چھپانے والا ہے, تجھ سے کون چھپانے والا ہے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے, اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے. ہم تو اقراری مجرم ہیں اللہ, ہم تو تیرے سامنے اقرار ہی کر رہے ہیں. اللہ تو معاف کرنا, تو معاف کرتا ہے اور تو معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں اپنا بنا لے, ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر انگلی پکڑ کر چلا دے, اللہ انگلی پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دے ہمیں, ہماری اعلی اولاد کو اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم دائم رکھنا, کفر سے شرک سے بدعات سے کبائر سے بچا لینا. اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر باقی رکھنا اور ایمان پر تیری رضا والی موت نصیب کر دینا. اے میرے مالک, آنے والے جتنے بھی فتنے اور پریشانیاں اور بیماریاں ہو, اے اللہ ان تمام سے ہماری اعلی اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما, اس مجمع کی مغفرت فرما. ہماری مائیں اور بہنیں دور دور سے آتی ہیں درس حدیث کو سننے کے لیے, اے اللہ ان کا آنا قبول فرما, ہم سب کا آنا قبول فرما. قدم قدم کو ہمارے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا, مغفرت کا ذریعہ بنا, رحمت کا ذریعہ بنا, عافیت کا ذریعہ بنا. اے اللہ سکون کا ذریعہ بنا, گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما, آپس میں محبت مبدت نصیب فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, حافظ قرآن بنا, دین کے داعی بنا, محدثین مفسرین فقہا میں سے بنا, اولیاء کاملین میں سے بنا. اے اللہ ہمیں اپنی نگاہ میں چھوٹے بنا, ہمیں اپنی نگاہ میں چھوٹے بنا. اے اللہ لوگوں کی نگاہ میں ہمیں بڑا بنا. اے اللہ تکبر سے, حسد سے, بغض سے, کینہ اور کپت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اے اللہ ان مخلصین کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.